ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें यह बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। जम्मू कश्मीर में हाल में आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में भी अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा है, लेकिन वह आतंकवाद छद्म युद्ध का सहारा लेकर स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के सरपरस्तों को बताना चाहते हैं कि उनके नापाक इरादे कभी भी पूरे नहीं हो सकते और भारतीय जवान पूरी तरह से आतंकवाद को कुचलने तथा देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। श्री मोदी ने देश की रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह देश में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इससे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को गुमराह करने वालों ये लोग अतीत में भी सशस्त्र बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका बलिदान और वीरता प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। संसद के दोनों सदनों में भी करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सैनिकों के शौर्य और बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि सैनिकों ने युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह सदन करगिल की प्रतिकूल परिस्थितियों और दुर्गम इलाके के बावजूद दुश्मन पर शानदार विजय प्राप्ति और सैनिकों की असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को नमन करता है। शहीद सैनिकों की याद में दोनों सदनों में मौन रखा गया। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी है। वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में अल्पकालिक लोकलुभावन विचारों के बजाय मध्यम और दीर्घकालिक विचारों को अपनाया है। वहीं सीपीआई सदस्य पी संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि बजट जन विरोधी और संघीय विरोधी है। देश में प्रतिवर्ष कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2024 में कैंसर के 15,33,000 से अधिक मरीज सामने आए। वहीं 2022 में यह संख्या 14,61,000 से ज्यादा थी। लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि सरकार ने लोगों के लिए आसानी से और कम पैसों में कैंसर की जांच और इलाज के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 131 कैंसर रोधी अनुसूचित फॉर्मुलेशनों की अधिकतम कीमतें तय करना और 42 चुनिंदा कैंसर रोगी गैर अनुसूचित फॉर्मुलेशन के व्यापार मार्जिन को सीमित करना शामिल है। देश में वर्तमान में कुल 785 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में इन सेंटर की सेवाओं के माध्यम से कुल 9,19,712 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई। वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित और संकट में फंसी महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उपग्रह टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीति दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश में 393 निजी सैटेलाइट समाचार टीवी चैनलों को अनुमति दी है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में भारत फाइनल में पहुंच गया है। आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। भारत ने 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 81 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दूसरे सेमीफाइनल में शाम 7 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। फाइनल रविवार को होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत आज से होगी। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का आयोजन पेरिस में सीन नदी के किनारे भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।